ஓம் சாந்தி. ஹம் ஆப் சபி யஹி லக்ஷ்ய லேகர் சல் ரஹே ஹை கி ஹமே பாப் சமான் பன்னா ஹை. ஹர் ஆத்மா கா லக்ஷ்ய யஹி ஹை. தோ பாப் சமான் மே சப்சே படி பாத் கௌன் சி ஹை, ஜோ ஏக் பாத் கர் லோ தோ சமான் பன் ஜாவ். வோ பாத் ஹை பாப் சதா ஏக் ரஸ் ஹை. ஜோ ஆத்மா ஏக் ரஸ் ஸ்திதி கோ ப்ராப்த் கர் லேதி ஹை, வோ சமான் பன் ஜாதி ஹை. ஹம் ஆப் சப் கோ ஜ்ஞான் கி கோஹி பாயிண்ட் கா யோக மே சக்தியோ கா குணோ கே த்வாரா சேவாவோ மே லாப் கா சேவாவோ சே துவாவோ கே குஷி கா அனுபவ தோ சப் கோ ஹை. ஐசா கோயி ஆத்மா நஹீ ஹை ஜிஸ்கோ அனுபவ நா ஹோ. அகர் அனுபவ நா ஹோதா தோ ப்ராஹ்மண ஜீவன் மே சல் நஹீ சக்தே தே. க்யோங்கி ப்ராஹ்மண ஜீவன் பஹோத் த்யாக் ஔர் தபஸ்யா கி ஜீவன் ஹை. லேக்கின் ப்ராப்தி கே ஆகே த்யாக் மஹ்சூஸ் நஹீ ஹோதா ஹை. இத்தனி ஜாதா பாபா சே ப்ராப்தி ஹோ ரஹீ ஹை கி இத்தனா படா த்யாக் கர்னே கே பாத் லக்தா ஹீ நஹீ ஹை கி குச் த்யாக் கியா பீ ஹை. லக்தா ஹை மௌஜ் கர் ரஹே. த்யாக் மௌஜ் மே பதலா ஹுவா ஹை ப்ராப்தி கே ஆதார் சே. நஹீ தோ ஆப் பூரே சன்சார் மே கஹீ பீ ஜாவோ, கிசி கோ போலோ ஹம் தும்கோ லாக்கோ கரோடோ ருபயா தேங்கே, ஆப் சிர்ஃப் ப்ரஹ்மச்சாரி பன்கர் திகா தோ பஸ். பன் பாயேகா கோயி ப்ரஹ்மச்சாரி? நஹீ ரஹ் பாயேகா. ஔர் ஆப் கோ லாக்கோ கரோடோ சே நா ஜானே கித்தனா ஜாதா ப்ராப்தி ஹோ ரஹீ ஹை, இஸ்லியே சஹஜ லக்தா ஹை, த்யாக் த்யாக் நஹீ லக்தா ஹை. தோ அனுபவ சபி ப்ராஹ்மணோ கோ ஹை. அனுபவ கே ஆதார் சே ப்ராஹ்மண ஜீவன் மே சல் ரஹே ஹை. நஹீ தோ ப்ராஹ்மண பன்னா மானா பேப்பர் கா சாம்னா கர்னா. பிகன் பரிஸ்தித்தியா பேப்பர் ஆனா சுரு ஹோனா, லேக்கின் வோ சாரே பேப்பர் கோ சஹன் கர்த்தே ஹுயே ஃபிர் பி ப்ராஹ்மண ஜீவன் மே சல் ரஹே ஹை, தோ ப்ராப்தி ஹோ ரஹீ ஹை தப் சல் ரஹே. அகர் ப்ராப்தி நஹீ ஹோதி தோ சல்னே கா சவால் ஹி நஹீ தா. தோ ப்ராப்தி தோ ஹை, அனுபூதி சப்கோ ஹை, லேக்கின் லாஸ்ட் புருஷார்த் ஹை கி ஜோ ஆப் ஆத்மா நே யோக மே அனுபவ் किया पाप के साथ का समानता का अनुभव किया वो अनुभव बना रह जाए, वो अनुभव एक रस हो जाए, जो अपनी स्थिति है हर बात की एक रस रहे, किसी भी कारण अकारण से स्थिति ऊपर नीचे ना हो, तो एक रस स्थिति बनाना ये ब्राह्मणों का सबसे लास्ट पुरुषार्थ है। लेकिन लास्ट का मतलब लास्ट नहीं, करना अभी से है, लास्ट फाइनल स्टेज है। ये जितना अभी से तीव्र पुरुषार्थ इस पर चलाओगे, एक रस टिकने का कोई भी बात है, आपको आज मुरली में कोई पॉइंट बहुत अच्छी लगी, उस पॉइंट में टिके रह जाओ सारा दिन। ये नहीं अच्छी लगी आधा घंटा उस पर मन चला, उसके बाद फिर मन कहीं और भागने लगा, नहीं, जो लगा उसमें टिके रह जाओ। वो अभी से जब अभ्यास बढ़ाना शुरू करोगे, एक प्रैक्टिस और दूसरा है एक रस स्थिति का आधार, तीन बातें हैं। उन तीन बातों के आधार से आप आत्मा अपनी स्थिति एक रस बना सकते हो। वो तीन बातें हैं, एक ड्रामा के पॉइंट पर अटल रहना, दूसरा बाबा से शक्ति लेकर आत्मा को समर्थ बनाना, और तीसरा है सर्व खजानों से संपन्न होकर इच्छा मात्रम अविद्या बनना, संतुष्टता की देवी बनना, देवता बनना। ये तीन बातें अगर आपके जीवन में है, ड्रामा पर अटल निश्चय, बाबा से शक्ति आपको प्राप्त हो रही है जिससे आत्मा समर्थ बन रही है, और तीसरा है सर्व खजानों से संपन्न। क्योंकि समर्थ आत्मा ही विघ्नों का सामना कर सकती है। बताया ब्राह्मण बने और विघ्न आना शुरू हो गया, युद्ध के मैदान में आ गए, तो जितना आगे बढ़ोगे उतना माया रुस्तम बनकर आएगी, हर प्रकार से, मन में भी, वचन में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, धन में भी, सब रूप से जितना आप आगे बढ़ोगे उतना परिस्थिति विकराल से विकराल और सूक्ष्म से सूक्ष्म दोनों रूप से आएगी। विकराल देखकर घबरा जाएंगे, सूक्ष्म को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये माया है या मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है। क्योंकि जब सूक्ष्म विषम माया का वार होता है तो ये फील नहीं होता है कि वार हो रहा है, लगता है मजे में है। योग नहीं लगा तो भी अंदर फीलिंग नहीं आती है कि हाय नहीं लगा, एक अंदर परेशानी उठ जाए योग क्यों नहीं लगा, वो नहीं लगेगा। ये है माया का सूक्ष्म वार। अंदर संकल्प आ जाएगा अभी निरंतर योगी कौन बना है, योग तो सबका टूटता रहता है, ऐसे संकल्प आकर अलबेले हो जाएंगे। ये है सूक्ष्म वार। ऐसे गुणों की धारणा पर है, सेवा पर है, जो सूक्ष्म वार होता है उससे अलबेले होते, और जो विकराल वार होता है उससे दिल शिकस्त हो जाते और दोनों पुरुषार्थहीन बना देता है। दिल शिकस्त वाला तो जैसे मुर्दा बन जाता है, ऐसे मुर्दा हिलडुल नहीं सकता है, ऐसे पुरुषार्थ एकदम खत्म हो जाता है। तो विघन परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन इन तीन बातों के आधार से स्थिति को एक रस बनाना है। पहली बात है ड्रामा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा तो एकदम नरम मुलायम रहता है, उसको कुछ चिंता नहीं होती, सदा हल्का रहता है। कारण, बाबा ड्रामा पर खड़ा रहता है। अगर कोई गलती करता है तो जानते हैं इसका आगे सतयुग में पद कम है, इसलिए बाबा हल्का रहता है। हम आप सब ड्रामा की बात जानते हैं, हम आप सब जानते हैं कि जो करेगा वो पाएगा, जानते अच्छी तरह से जानते, लेकिन जैसे कुछ बात होती है ये पॉइंट पता नहीं कहाँ गायब हो जाती, तुरंत एक्शन का रिएक्शन आ जाता है। ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जानते हुए भी। और कई बार ये बात याद होते हुए भी फिर भी ड्रामा नहीं लग रहा है। इसका कारण है कि ड्रामा क्यों नहीं लगता है, उसका मेन कारण है कि ड्रामा लगाने की हम आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसे योग लगाते 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 अंत में लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, ऐसे ड्रामा की पॉइंट लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं लगेगा। छोटी छोटी बात पर ड्रामा लगाओ। अभी तो हम छोटी बात में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सा किसी को बोलाओ बात भूल गया, छोटी सी बात है, यही बोला था पेन ले आना और नहीं लाया, तो तुरंत आ जाता है क्यों नहीं लाया जब बोला था, तुम भूल ही जाता है, भुलक्कड़ है क्या, ऐसे ऐसे शब्द तुरंत आ जाते। तो जब हम इतनी छोटी बात पर ड्रामा नहीं लगा पाए, एक पेन के कहने पर नहीं लाने पर, गिलास का पानी बोला था लाकर रख देना, नहीं रखा और संकल्प चल गया, तो अगर हम इतनी बात पर ड्रामा नहीं लगा पा रहे हैं तो बड़ी बात पर कहां से लगा पाएंगे। ड्रामा लगाने का मतलब पुरुषार्थ ही नहीं, कोई गलती कर रहा है उसको शिक्षा नहीं दो इसका मतलब ये नहीं। करना सब कुछ है लेकिन स्थिति को संभाल करके, आवेश में नहीं आकर। हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उस बात को बुद्धि में बिठाकर उस एक्शन का रिएक्शन के रूप में शिक्षा देते, ऐसे नहीं शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भूल जाते हो ध्यान रखना। नहीं, वो पानी नहीं लाकर रखा है इसलिए अंदर से गुस्सा आ रहा है, फिर उस भाव से हम उसको शिक्षा दे रहे, ये गलत है। ये ड्रामा हम नहीं लगाया। ड्रामा लगाओ, अभ्यास करो, छोटी छोटी बात पर अभ्यास करो और जहां गलती हुई वहां सुधरो और सुधारो। लेकिन ड्रामा लगाओ, ऐसे नहीं गलती करते रहो ड्रामा लगाते रहो। गलती हुई किसी से, अपने से या दूसरे से, फुल स्टॉप, जो चीज हो गई उसका ड्रामा, आगे से अटेंशन, लेकिन ड्रामा। लेकिन तब लगेगा बताया जब बहुत समय से अभ्यास होगा, पहली बात। दूसरी बात है, ड्रामा की तीन बात याद रखो। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट। ये तीनों बातें जब एक साथ सोचोगे फिर आपका ड्रामा लग जाएगा। एक प्रैक्टिस, दूसरा है तीन बातें, न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट। अब आप देखो कि ड्रामा न्यायकारी कैसे है। कई समझते हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, उदाहरण ले लो, कई ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत सताया जाता है, हमारे साथ दूसरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो क्या ये न्याय है? कहा जाता है ड्रामा न्यायकारी, तो क्या ये न्याय है? क्या कहेंगे? दूसरा हमें सता रहा है, दबा रहा है, दुख दे रहा है, तो क्या ये न्याय है? न्यायकारी कहा जाएगा, कहा जाएगा। यथार्थ में तो न्याय है लेकिन लगता नहीं न्याय, क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है उसको महसूस बहुत होता है। लेकिन न्यायकारी इसलिए है क्योंकि अगर उसे अभी सताया जा रहा है तो जरूर ये कभी सताया हुआ है, तो किए हुए कर्म का फल तो मिलना ही। हमें वहां अन्याय तब दिखाई देता है वहां, जैसे देखो कोई ड्रामा चल रहा है या पिक्चर जो भी कहते हैं, सिनेमा ड्रामा जो भी चल रहा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको खलनायक क्या कहते, वो पचासों का खून करता है, मर्डर करता है, और वो मर्डर करके हर बार जैसे एक राजा बन करके रहता है, लेकिन ड्रामा के सीन की बलिहारी है, चाहे लौकिक दुनिया में जो पिक्चर चलता है वो, चाहे ये चैतन्य ड्रामा का पिक्चर चल रहा है, अंत में हिसाब किताब क्लियर सबका होता ही। उस ड्रामा में भी देखो, लौकिक दुनिया में जो पिक्चर चलता है, जो खलनायक कितने को मारता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है। अब जब उसने 50 लोगों को मारा तो वो आपने नहीं देखा ड्रामा में, वो सीन नहीं देखा, और अंत में जब वो मारा जा रहा था, 10-15 लोग उससे मिलकर मार रहे थे, वो सीन आपने देखा, तो आप यही कहोगे ना, इसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अन्याय हो नहीं रहा है, इसने 50 को मारा है, अब उसको उसका फल मिल रहा है, लेकिन 50 को मारा वो हमने नहीं देखा, हम तो इसको मार खाते हुए देख रहा हूं, इसलिए कहता हूं अन्याय। तो अब से पहले का जो पार्ट इसने बजाया हुआ है वो हम सब स्मृति में नहीं है कि क्या बजाया है, इसलिए वर्तमान में जब कुछ ऐसा होता है तो कहते हैं इसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा है, चाहे दूसरे की ऊपर है चाहे अपने ऊपर है। अगर हमको दबाया जा रहा है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है। तो ड्रामा सदा न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता। और दूसरी बात है, ड्रामा न्यायकारी क्यों है, क्योंकि ड्रामा निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं करता है, निष्पक्ष है। क्यों निष्पक्ष है ड्रामा, क्यों निष्पक्ष है, भगवान क्यों निष्पक्ष है, उसका जवाब इससे आ जाएगा। भगवान क्यों निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो भी बात कहता है सबके लिए समान रूप से कहता है, हिम्मत रखो मदद मिलेगी, वो सबके लिए कहता है, बाकी निष्पक्ष है। क्यों निष्पक्ष है, क्योंकि भगवान का कोई अपना है ही नहीं और सब अपने हैं। जहां अपना है वहां पक्षपात है, जब अपना कोई है ही नहीं तो किसके लिए पक्षपात। अपना कोई भी नहीं और सब अपने, तो ड्रामा का कोई अपना स्पेशल नहीं है, तो ना ड्रामा का कोई है और सभी एक्टर ड्रामा के पार्ट के बंधन में बांधे हुए हैं, सभी ड्रामा के बंधन में हैं भी और ड्रामा का कोई है भी नहीं, इसलिए निष्पक्ष है। जो निष्पक्ष होगा वही यथार्थ निर्णय दे सकता है, वही न्याय कर सकता है। तो पहली बार ड्रामा न्यायकारी, न्याय पर उसके निश्चित रहो। दूसरी बात ड्रामा कल्याणकारी। अब ड्रामा कल्याणकारी कैसे? जैसे देखो, आपको पहला एग्जाम्पल दिया था कि किसी को दबाया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो उसके साथ न्याय हो रहा है, ये आप सबने स्वीकार किया। लेकिन उसके साथ कल्याण भी हो रहा है, वो दबाया जा रहा है और उसका कल्याण हो रहा है बात ये? पांडव अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि जब मेरे को दबाया जाता है तो हम 10 लोगों को बताते मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, फलाना मेरे साथ ऐसे कर रहा है, फलाना मेरे साथ ऐसे कर रहा है, बताते नहीं कहते, और कोशिश करते हैं उनका सहयोग मिले, हमारी तरफ से उनको कुछ कहें कि ऐसा नहीं करो। कल्याणकारी इसलिए है कि इस आत्मा ने जो अभी दुख मिल रहा है, ये कहीं न कहीं कभी न कभी जिस आत्मा के द्वारा मिल रहा है उसको दुख दिया हुआ है, उसका रिटर्न मिल रहा है। अब अगर एक साथ मिल गया तो सदा के लिए दुख से छूट जाएगा, तो सदा के लिए दुख से छूटना अच्छा है या थोड़ा थोड़ा जीवन भर भोगता रहना अच्छा है? है ना? फिर एक बार कोई थप्पड़ मार दिया जोर से, दर्द हुआ सहन कर लिया, अब चलो मार खाने से तो बच गए, और कोई धीरे धीरे पूरा जीवन ही मारता रहे तो कितना खराब लगेगा। बाबा मुरली में कहता है, मधुबन में आए टांग कट गई अहो सौभाग्य। अब सोचो टांग कट गई और अहो सौभाग्य, क्यों? क्योंकि टांग कटी, उसके जीवन का जितना पाप था सब कट गया, आगे ऊंचा पद फिक्स है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं कि दिल्ली की एक घटना है, बहुत समय पहले साकार बाबा के समय की बात है। एक माता थी बेगरी पार्ट के समय, उसने अपना तन मन धन जो कुछ भी था सब यज्ञ की सेवा में दे दिया था, बहुत पुरानी बात है। तो वो अकेले मकान में रहती थी, कमरा था। तो एक बार सुबह 4 बजे उठी, जाकर चाय पी लिखकर योग करते हैं, तो चाय बनाने के लिए किचन में गई। तो उसने क्या किया था, शाम को खाना बनाया था, खाना बनाने के बाद जो गैस का बर्नर होता है वहां से तो बंद कर दिया था, लेकिन सिलेंडर से रेगुलेटर क्या कहते हैं उसको नहीं बंद किया था। तो पहले शुरू शुरू में जब गैस निकला तो रबड़ के ही पाइप होते थे, अब तो उसके ऊपर कुछ लोहा वोहा भी चढ़ा देते हैं, पहले रबड़ के पाइप। तो क्या हुआ, रात को चूहे ने गैस का पाइप काट दिया। तो उस कमरे में कहीं वेंटिलेशन खिड़की भी नहीं थी, छोटा सा किचन था। तो चाय बनाने गई तो गैस पूरा सिलेंडर खाली हो गया था, लीक हो गया था। और उसने उसको बांस आई, लाइट जलाई, बांस आई, लेकिन उसने माचिस जलाई, गैस तो चारों तरफ फैला ही था, उसी में जल के मर गई। अब प्रश्न उठता है, जब भगवान के कार्य में उसने इतना सहयोग दिया तो भगवान ने उसे उस समय क्यों नहीं टच किया कि बच्चे तुम माचिस नहीं जलाओ। क्या बाबा का फर्ज नहीं था उसे टच करना कि तुम माचिस नहीं जलाओ, नहीं तो नेचुरल है जीवन लीला समाप्त होगी। तो जब बाबा को भोग लगाया गया तो बाबा से पूछा गया था कि बाबा आपने इसे मदद क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं टचिंग दी कि माचिस नहीं जलाओ। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने बाबा के समय बेगरी पार्ट के समय बहुत मदद की है, इसका रिटर्न बाप को देने के लिए बांधायमान है और इसका सतयुग में बहुत ऊंचा पद है इस बच्ची का इस रिटर्न में, लेकिन इस बच्ची के ऊपर इतने ज्यादा पाप कर्मों का बोझा था कि कितना भी योग लगाती लेकिन खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन बाबा को ऊंचा पद देना है क्योंकि ऐसे समय पर मदद किया है, इसलिए इसका सारा हिसाब किताब खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो बोलो, जलना कल्याणकारी हुआ या नहीं हुआ? ऐसे देखा जाए तो कितना उल्टा है, लेकिन संगम युग पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर बच्चे श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो हर पार्ट कल्याणकारी है। आज भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के लिए कुछ कहता भी है, अगर कुछ हो भी गया तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं उसको सीधा कर दूंगा, कल्याणकारी बना दूंगा। तो इसलिए संगम युग पर अपनी मत प्रमाण न चलो, श्रीमत प्रमाण चलते रहो तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है। चाहे देखने में उल्टा लगता है लेकिन है प्रैक्टिकल में कल्याण। एक ने प्रश्न पूछा था कि जो आदि में शुरू में 400 का संगठन था उसमें से बहुत लोग भागंती हो गए, जब है यहां माउंट आबू में आए तो चले गए यहां, तो उनके लिए क्या कल्याण हुआ है? है उनके लिए कुछ कल्याण? जो यज्ञ छोड़ छोड़ कर चले गए, लेकिन जितने गए यज्ञ छोड़ करके आज की बाबा की मुरली में था, वो आएंगे जरूर सतयुग में। ऊंचा पद नहीं पाएंगे लेकिन आएंगे जरूर। वो तो बाबा ने उनके लिए कहा जो चंडाल बनेंगे, जो पैसा देकर ले भी लेते हैं वो आएंगे, लेकिन वो बच्चे जो गए वो बाहर सेवाओं के निमित्त बने, बाहर सेवाओं के निमित्त बने। जहां जहां भी गए हैं वो निमंत्रण दे दे करके सेवाओं के लिए बुलाया है, बहुत कल्याण का पार्ट बजाया है, पहली बात। दूसरी बात, बेगरी पार्ट का समय था तो कई गुप्त रूप से मदद करते रहे थे, पालना ली हुई थी, इसलिए कल्याण था। तो सतयुग में तो वो भी आएंगे, सतयुग में आना भी कोई कम भाग्य की बात नहीं है, स्वर्ग देख तो लेंगे। कहां लोग कहते हैं मरने पर स्वर्ग कोई जाता नहीं है, लेकिन गायन है, लेकिन वो चैतन्य में तो स्वर्ग में जाएंगे, देखेंगे तो सही। तो दूसरी बात न्यायकारी है, और तीसरी बात ड्रामा एक्यूरेट है। जिस समय जिस कर्म का जो फल मिलना है उस समय वही फल मिलेगा, आप चाहो या न चाहो। आप चाहते हो सब ठीक ठीक रहे, हर एक चाहता है, लेकिन अगर हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं तो समय पर वो फल मिलना ही है, दुख या सुख का। एक्यूरेट है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। अभी हमें कुछ प्राप्ति हुई, चाहे अच्छी चाहे बुरी, एक्यूरेट टाइम पर मिली। कई कहते कल मिल जाता, परसों मिल जाता, ऐसा हो जाता, ये नहीं, एक्यूरेट। हाँ, अब अगर श्रीमत पर चलते हो, सबके लिए है, अपने को बाबा पर अर्पित किया हुआ है, बाबा 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 है आपके जीवन में, तो बाबा की मदद सूली से कांटा बना देगी, ये जरूर होगा, ये विधान है, ईश्वरीय नियम है। तीन बातें, तन मन धन से मददगार, बाबा पर अटूट निश्चय, और तीसरी बात इतना समर्पण भाव, बस बाबा मैं आत्मा इस शरीर सहित जो हूं जैसी हूं, बस बाबा आपकी, आप जानो आपका काम जाने, मैं आत्मा बस आपकी, आपके श्रीमत पर मुझे चलना है, आपके आधार पर मेरा जीवन है, ऐसे समर्पण एकदम, फिर देखो बाबा की मदद मिल जाती है, सूली से कांटा बन जाएगा, बाकी आएगा तो जरूर। तो एक्यूरेट दुख या सुख, सजा मिलेगा जरूर, लेकिन अगर बाबा पर बलिहार हैं तो सजा सूली से कांटा हो जाएगा, मदद दे देगा। और अगर कुछ सजा के रूप में मिली भी तो वो सजा आपके लिए श्रेष्ठ भाग्य ले आएगी, वो सजा सजा नहीं रहेगी, वो सजा सेवा का आधार बन जाएगी। जैसे देखो जब अपनी गुलजार दादी बीमार पड़ी, बीमार पड़ना भी सजा ही है, कर्म का फल है, बीमार पड़ी, ऑपरेशन कराने बॉम्बे गई थी, तो जब गई हॉस्पिटल में तो जो अशोक मेहता डॉक्टर है, कैंसर का डॉक्टर था, तो वो कुछ आश्रम से परिचित नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, तो जैसे दादी को देखा तो उसको दादी के द्वारा देवी का साक्षात्कार हो गया। गई थी ऑपरेशन कराने और देवी का साक्षात्कार हुआ। अशोक मेहता जैनी है, देवियों को मानता है, तो उसने तुरंत अपने घर में फोन किया अपनी युगल के पास कि आओ हॉस्पिटल में देवी आई है, दर्शन करके जाओ। तो वो इस आश्रम के संपर्क में भी नहीं था। एशिया का सेकंड नंबर का डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है, इसलिए उससे ऑपरेशन कराना था। तो उसी समय से वो संपर्क में आया और इतना बाबा का सहयोगी बच्चा बन गया कि न जाने कितने भाई बहनों का ऑपरेशन अब तक वो कर चुका है। अपना ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में है उसका डायरेक्टर भी है। तो देखो शरीर कैसा था, मिली थी सजा, लेकिन हुई कितनी बड़ी सेवा। तो अगर बाप पर अर्पित हैं, सरेंडर हैं, एक सिर्फ बाबा 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 है, तो बाबा उसका फरसूली से कांटा कर देगा। और अगर कुछ प्रैक्टिकल हुआ भी थोड़ा बहुत, तो उससे सेवा बहुत करा लेगा, कल्याण ही कल्याण उस पे समाया है। तो ये तीन बात पक्का रखो, ट्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, और हमें अभी से ट्रामा का अभ्यास करना है। हर बात में ड्रामा लगाने का अभ्यास करो, करना पड़ेगा, नहीं तो अंत में बहुत दर्दनाक सीन होगी। आपके रिलेटिव आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे, वो तड़प तड़प कर चिल्ला रहे होंगे, हाय बचाओ बचाओ। कुछ ड्रामा की पॉइंट पक्का करना पड़ेगा। इस आत्मा का ये पार्ट साक्षी होकर देखना पड़ेगा और मास्टर भगवान बनकर उनको सकास देना पड़ेगा, जिससे वो दुख से छूट जाए। रक्षा भी करनी पड़ेगी, लेकिन रक्षा तब कर सकेंगे जब साक्षी रहेंगे। तब साक्षी होकर भगवान को साथी बनाएंगे, तब भगवान के साथ साथ आपका सकास काम देगा, आपकी शक्ति काम करेगी, उनकी रक्षा करेगी, उनको दुखों से मुक्त करेगी, उसको मुक्ति देगी। ये आप क्या उस समय सकास की किरणें मदद, बाणी नहीं काम करेगी, बाणी का समय नहीं है वहां, ये हाथ नहीं काम करेगा, सिर्फ आपकी मनसा काम करेगी। बस आप बाबा के पास और बाबा की किरणें उस तक पहुंच रही, आपकी भी सेफ्टी उनकी भी सेफ्टी हो जाए। तो न्यायकारी, कल्याणकारी, एक्यूरेट और ड्रामा की प्रैक्टिस, फिर आपका ड्रामा का पॉइंट लगेगा। यह अभी से अभ्यास करो। अभी देखो चल रहे हैं, कहीं किसी का पैर टकरा जाता है, तुरंत मन में आ जाता है, देख करके नहीं चलता है क्या? नहीं, वहां लगाओ ड्रामा, मन को हिलने नहीं दो, अपनी स्थिति संभाल करके फिर बोलो, भैया थोड़ा ध्यान से चलना था। लेकिन अपनी स्थिति को नहीं हिलने दो, हम देखो कहां बैठे, स्थिति नहीं चलाए मान है। तो हर बात में ड्रामा लगाओ, जो बीत गई वो आगे के लिए ड्रामा नहीं। कि आज हम कहते हैं ठीक है ड्रामा में होगा तो सुबह योग में उठेंगे, नहीं तो ड्रामा नहीं, ये उल्टा ड्रामा नहीं। जो बीत गई वहां ड्रामा, बाकी उस पर अटेंशन देकर आगे पढ़ो। दूसरी बात है बाप से शक्ति लेना, क्योंकि आत्मा अगर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है तो आत्मा कमजोर है। जो आत्मा सोचे वो कर ले, उसके लिए आत्मा में ताकत चाहिए। ज्ञान आपको ताकत लेने का रास्ता बताता है, योग से शक्ति मिलती है। तो योग से शक्ति कब मिलेगी? शक्ति की भी तीन रूप है, एक है करंट, एक है सकाश, एक है सर्च लाइट। करंट, सकाश, सर्च लाइट। आप देखो सुबह योग में बाबा से शक्ति ले पाते हो या नहीं? शक्ति लेने का आधार है एक रस बाप के साथ जुड़े रहना, निराकार बाप के साथ आप आत्मा एक रस जुड़ी रहो, अर्थात बाप के पास बैठी रहो। अनुभव होगा शक्तियां आई, आत्मा बलवान बनी है, आत्मा के पाप खत्म हुए हैं, आत्मा दिव्यता को प्राप्त किया है, ये प्रैक्टिकल अनुभव होगा, अनुभूति होगी। लेकिन विधि है जब बैठो एक रस होकर, जैसे देखो बैटरी को चार्ज करना है, आप कनेक्शन जोड़ दो लेकिन एक रस करंट ना आए, कभी आए कभी ना आए, कभी वोल्टेज डाउन हो कभी वोल्टेज हाई हो, कैसे हो, तो क्या बैटरी चार्ज होगी या और बैटरी खराब हो जाएगी? ऐसे आत्मा जब एक रस बाप के पास बैठे, मैं हूं ही आत्मा, बैठ के देखो क्या सुख है क्या शक्ति है। कहते हैं करंट तुरंत मिलती है, अनुभव करो इसी। फिर सकाश सर्च लाइट सेवा के लिए, लेकिन पहले स्वयं में शक्ति भरो। ठीक है, अभी थोड़ी देर लास्ट का योग करते हैं 3 मिनट, इसी स्थिति का अभ्यास करना, बाप के पास बैठने का। ओम शांति।